मालविका को केशव ने किडनैप किया था। केशव के जरिए मालविका को पता चला कि इशिका उसकी और राधिका की बेटी है। केशव को पता चला था कि मालविका ने इशिका को बहुत तकलीफ दी थी, उसी का बदला लेने के लिए केशव ने उसे अगवा था। मालविका काफी शातिर औरत थी, उसने सही वक्त पर सही दाव खेलते हुए केशव को ये बताया कि राधिका ने उस वक्त जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। मालविका ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि केशव का गुस्सा उससे डाइवर्ट होकर राधिका पर चला गया। उसके हिसाब से राधिका ने पहले केशव से उसके बच्चे का सच छुपाया तो बाद में जुड़वां बच्चे पैदा करने का। केशव इस वक्त मालविका को छोड़कर गुस्से में राधिका के पास जा रहा था। कुछ ही देर में वो राजवंश विला पहुंच चुका था। मालविका के जेल से फरार होने की वजह से वसुधा ने पहले की तरह राजवंश विला की सिक्योरिटी टाइट करवा दी थी, लेकिन केशव को किसी ने नहीं रोका। अंदर जाते हुए केशव का सामना पहले प्रशांत से हुआ। उसे अचानक वहां देखकर प्रशांत ने मुस्कुराकर कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिस्टर सिंघानिया, अगर आप यहां आने वाले थे तो पहले बता देते। और पहले बताने से क्या हो जाता, केशव ने बेरुखी से कहा। आप मुझे खुश करने के बजाय अपने बेटे को देखिए जो जेल में है। मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु राजवंश उसे बाहर निकलने देगा। एक बाहर वाले के मुंह से ताने सुनकर प्रशांत की गुस्से में मुठ्ठियां कस गई थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपके साथ इज्जत से पेश आ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी इंसल्ट करेंगे। हमारे बिजनेस रिलेशंस हैं, इस वजह। प्रशांत काफी तमीज से अपनी बात रख रहा था, लेकिन केशव कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मेरे बिजनेस रिलेशन राजवंश एम्पायर और अभिमन्यु के साथ में है, तो बीच में आप कहां से आ गए? वैसे भी कंपनी में आपके इतने कम शेयर्स हैं कि आपका कोई डिसीजन मायने नहीं रखता है, केशव ने बेरुखी से जवाब दिया। इससे पहले कि प्रशांत कुछ कहते, केशव ने उनका मुंह बंद करवाते हुए आगे कहा, आपका पता नहीं, लेकिन मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। इस वक्त मुझे राधिका सिंघानिया से बहुत जरूरी बात करनी है। उम्मीद है मेरा रास्ता काटने के बजाय आप अपने बेटे को बाहर निकलवाने पर फोकस करेंगे। इतना कहकर केशव अंदर जाने लगा। प्रशांत तो उसके चेहरे को देखता रह गया। दिन ब दिन अभिमन्यु की पोजीशन ऊंची होती देखकर उसका खून जल रहा था। पहले जब अभिमन्यु ने दिल्ली में बिजनेस एक्सपैंड नहीं किया था, तब वो उसे ये कहकर प्रेशराइज कर सकते थे कि उनकी वजह से उनका बिजनेस कैपिटल सिटी में नहीं फैला था, लेकिन अब तो अभिमन्यु ने वहां भी खुद को प्रूव कर दिया था। इस लड़के के बहुत पर निकल आए हैं, कुछ भी करके इसकी उड़ान को काबू करना होगा, वरना कल को ये तो हमारे सर पर बैठकर हमें अपने नौकरों की तरह ट्रीट करेगा, प्रशांत ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ केशव वसुधा के विला में पहुंचा। उसे पता था कि राधिका उसे कहां मिल सकती है। इस वक्त केशव को इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। आसपास काम करने वाले हाउस हेल्पर का उसके अचानक इस तरह आने पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। राधिका सिंघानिया, केशव ने जोर से चिल्लाकर राधिका को बुलाते हुए कहा, कहां हो तुम, मेरे सामने आओ, मुझे जानना है और कितना धोखे में रखा है तुमने मुझे। एक बार में ही सब कुछ बताकर मेरा दिल तोड़ दो, ताकि बार बार तुम्हारा झूठ सामने आने पर मुझे तकलीफ ना हो। केशव की बातें सुनकर हाउस हेल्पर आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे, लेकिन केशव को इससे क्या फर्क पड़ता था। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राधिका कमरे से बाहर आई। राधिका जल्दी से उसके पास गई और गुस्से में धीमी आवाज़ में बोली, क्या तुम्हें उम्र भर तमाशा लगाने के अलावा और कुछ नहीं आता केशव सिंघानिया? जो भी बात है अकेले में नहीं कर सकते, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझ पर तमाशा लगाने का इल्ज़ाम लगाने वाली खुद उम्र भर कितने झूठ बोलती आ रही है, क्या उसे इसका अंदाज़ा भी है? केशव ने राधिका की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज़ में कहा। राधिका को कुछ समझ नहीं आया, वो उलझन भरी निगाहों से केशव की तरफ देख रही थी। तो वहीं उसके इस तरह शोर मचाने पर इशिका और वसुधा भी कमरे से बाहर आईं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर केशव इतने गुस्से में यहाँ क्यों आया है। इशिका भी इस तरह अपनी माँ की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। वो केशव के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, डैड प्लीज़ बैठ कर बात करते हैं। नहीं इशिका, आज जो भी बात होगी यहीं पर होगी, केशव ने जिद पर अड़ते हुए कहा। केशव किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो वसुधा ने सख्त कदम उठाते हुए सभी हाउस हेल्पर को घर से बाहर भेज दिया था। इशिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने काफी प्यार से केशव से पूछा, डैड आखिर हुआ क्या है, आप मॉम पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं, उन्होंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है? अच्छा, तो अब तुम भी अपनी माँ के साथ हो गई, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया, केशव गुस्से में बिगड़ते हुए बोला। केशव का गुस्सा अब राधिका के बस के बाहर हो रहा था। राधिका ने गहरी सांस ली और तेज सख्त आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, जो कहना है सीधे सीधे कहिए, यहाँ कोई आपके पहेलियाँ सुलझाने के लिए नहीं बैठा है। सीधे सीधे ही सुनना चाहती हो तो सुनो, तुमने मुझे ये सच क्यों छुपाया कि तुमने ट्विंस को जन्म दिया था? अब मेरे सामने ये दिखावा मत करना कि तुम्हें पता नहीं था। तुमने हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे दूर होने का फैसला किया था। अब तक मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी मुसीबत में आ गई। एक को आदर्श ने अपनी रखेल के बच्चे के साथ बदल दिया तो दूसरी को कचरे में फेंक दिया था। क्यों छुपाया तुमने मुझे ये सब? केशव ने राधिका को सब कुछ बता दिया था। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। इशिका और राधिका ने यही डिसाइड किया था कि फिलहाल केशव को इस बारे में ना पता चलने में ही भलाई है। वो राधिका से पहले से ही नाराज था, ऊपर से इस तरह इस सच का सामना आना उसके गुस्से को बढ़ा गया था। राधिका की नजरें झुकी हुई थीं, मतलब साफ था कि केशव जो भी कह रहा था वो सच था। केशव के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। जिससे मैंने प्यार किया और सब कुछ समझा, उसने आज तक मुझे धोखा दिया, और जिस औरत को मैं मारने चला था उसने कम से कम मुझे आखिरी वक्त पर सच्चाई तो बताई। केशव ने सार्कास्टिकली सर हिलाकर कहा, आपको इस बारे में किसने बताया डैड? इशिका ने हैरानी से पूछा। मालविका दास ने, केशव ने जवाब दिया। अब उन्हें मालविका के भागने और गायब होने की वजह भी समझ आ गई थी। ये सब केशव का किया हुआ था। इशिका ने केशव की तरफ देखकर हैरानी से सिर हिलाकर कहा, क्या वो आपकी कैद में है? केशव ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया था। अब इशिका को समझ आ गया था कि केशव इतने गुस्से में यहाँ क्यों आया था। मालविका और आयशा ऐसी ही थी, वो अपनी बातों से किसी को भी मैनिपुलेट करके उसे कुछ भी करवा सकती थी। इशिका ने अपना सर पकड़ा और कहा, आप उस औरत की बातों के जाल में कैसे आ सकते हैं डैड? कहीं आपने उसे अकेला तो नहीं छोड़ दिया? हाँ, वो अकेली ही है, लेकिन ऐसी जगह पर है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। वो वहां से तब भी नहीं भाग पाएगी, ऊपर से मैंने उसे बांध कर रखा है, केशव ने बताया। ये आपने क्या कर दिया डैड? ये उसके भागने का प्लान था, और अब तक तो वो फॉर श्योर वहां से निकल गई होगी। इसका मतलब वो पहले से जानती थी कि माँ ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, इशिका ने जवाब दिया। उसने फिर राधिका की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे।
राधिका को परेशान देखकर इशिका भी मायूस हो गई थी। उसने राधिका को गले लगाया और प्यार से सहलाने लगी। फिर इशिका ने केशव की तरफ देखकर कहा, ये सब आदर्श सिंघानिया का किया धरा है। उसने सबको धोखे में रखा था। उसने मर्चेंट फैमिली से डील की और ईशानी को उन्हें दे दिया था ताकि वो माँ से दूर रहे। इधर मुझे बदल दिया गया। ये सब आदर्श और मालविका ने किया हुआ है। आप माँ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, उन्हें तो खुद नहीं पता था। मुझे भी ईशानी के बारे में तब पता चला जब मैं अभिमन्यु को तलाक देने जा रही थी। हम दोनों को मारने की साजिश भी आदर्श ने की थी। केशव के गुस्से में मुठ्ठियाँ कस गई थीं। उसने एक नज़र राधिका की तरफ देखा, जो काफ़ी मायूस और दुखी नज़र आ रही थी। केशव को अब अपने गुस्सा करने पर पछतावा हो रहा था। सिर्फ अकेले उसी ने नहीं, राधिका ने भी काफ़ी कुछ भुगता था। केशव ने आगे कुछ नहीं कहा। वो इशिका से बोले, तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखना, उस औरत को मैं देख लूँगा। वो अब तक वहाँ से चली गई है और मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं आपके साथ चल रही हूँ, इशिका ने राधिका से अलग होकर सख्ती से कहा। नहीं इशिका, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं केशव के साथ जाती हूँ, राधिका ने कहा। वो इशिका को किसी भी हाल में मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। इशिका उसे मना करना चाहती थी, लेकिन राधिका ने कहा, मुझे भी उससे अपने बहुत से हिसाब पूरे करने हैं, लेकिन मौका नहीं मिला। उसने हमेशा अपने बदले और जलन में मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है और अब भी यही करना चाहती है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं माँ, मुझे आपको खोना नहीं है। इतने सालों तक मैं आपके बिना रही हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं जा रही हूँ, इशिका ने नम आंखों से कहा। केशव ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों ही कहीं नहीं जाओगी, यहाँ पर बैठो और वेट करो, मैं अरमान के साथ जाकर सब देख लूंगा। इतना कहकर केशव उन दोनों को वहां पर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने पूरी सिक्योरिटी ली और अरमान के साथ इस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने मालविका को कैद किया था। इशिका का शक बिल्कुल सही निकला, मालविका वहां से भाग चुकी थी। अनजाने में केशव ने इशिका और राधिका के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। मुझे नहीं पता था वो औरत इतनी शातिर है, केशव ने अफसोस भरे अंदाज में कहा। डोंट वरी चाचू, कहाँ जाएगी, हम ढूंढ लेंगे, अरमान बोला। ये जगह काफी दूर है और आसानी से यहाँ कोई हेल्प नहीं मिल सकती, वो पैदल ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। उम्मीद है वो मिल जाए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, केशव ने मायूसी से जवाब दिया। अरमान और केशव मालविका को ढूंढने के काम पर लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अभिमन्यु पृथ्वी के साथ नकुल से मिलने के लिए जा रहा था। अभिमन्यु नहीं जानता था कि उर्वशी भी वहीं पर है और वो नकुल के साथ मिलकर इशिका के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। टिकर, फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले चैप्टर पर मिलते हैं। अच्छा, जिन भी रीडर्स के चैप्टर्स गायब होने की समस्या थी वो ऐप अपडेट कर लें, पूरा पेज ही डेवलपर ने नया बना दिया है, सो आगे से ये दिक्कत नहीं होगी।